नामक जो शास्त्र है उसके ऊपर दिव्य ध्वनि सार नामक जो गुरुदेव के प्रवचनों का जो शास्त्र है उसके ऊपर पेज 47 गाथा सातवीं। देखो अभी क्या लिखा है यहाँ, अथ चारित्र स्वरूपम विभायति, क्या विभावयति, क्या कहा है, अब चारित्र का स्वरूप व्यक्त करते हैं। गाथा पढ़ लेते हैं और बाद में हिंदी दो बार पढ़ेंगे।
चारित्रम खलु धम्मो धम्मो जोसो समोत्तिविद्धा मोहक्खो हरिहीनो परिणामो अपणो हूतम्। चारित्र धर्म है जो धर्म परिणाम निश्चय स्वयं का चारित्र निश्चय धर्म है तो धर्म वह सम है कहा है मोक्षो विहीन सम परिणाम निश्चय स्वयं का।
गाथा चारित्र वास्तव में धर्म है, जो धर्म है वह सम है, जो धर्म है वह साम्य है ऐसा शास्त्रों में कहा है। साम्य मोह क्षोभ रहित ऐसा आत्मा का परिणाम यानी भाव है। ये हमने पहले पढ़ा था मूल शास्त्र में, इसलिए मैं अभी केवल पढ़ रहा हूँ। टीका, स्वरूप में चरण करना रमणा तो चारित्र है, स्व समय में प्रवृत्ति करना अपने स्वभाव में प्रवृत्ति करना ऐसा इसका अर्थ है। यही वस्तु का स्वभाव होने से धर्म है, शुद्ध चैतन्य का प्रकाश करना, यह इसका अर्थ है। वही यथावस्थित आत्मगुण होने से विषमता रहित सुस्थित आत्मा का गुण होने से साम्य है, और साम्य दर्शन मोहनीय तथा चारित्र मोहनी के उदय से उत्पन्न होने वाले समस्त मोह और क्षोभ के अभाव के कारण अत्यंत निर्विकार ऐसा जीव का परिणाम है। भावार्थ, शुद्ध आत्मा के श्रद्धा रूप सम्यक्त्व से विरुद्ध भाव जिसको मिथ्यात्व कहते हैं वह मोह है, और निर्विकार निश्चल चैतन्य परिणति रूप चारित्र से विरुद्ध भाव यानी जिसको हम अस्थिरता कह सकते हैं वह क्षोभ है। मोह और क्षोभ रहित परिणाम साम्य धर्म और चारित्र यह सब पर्यायवाची है। अभी यहाँ से गुरुदेव के प्रवचन चालू होते हैं। वो कहते हैं ज्ञान और आनंद मेरा स्वरूप है और पुण्य पाप का विभाव पर रूप है, यानी वह मेरा स्वरूप नहीं है, स्वरूप नहीं है, पर रूप है, यानी वो मेरे स्वभाव जैसा नहीं है, इसलिए उसको विभाव भी कहने में आया है। तो क्या कहते हैं, स्वरूप में चरण करना यानी रमण करना, इसका ही अर्थ हम समझते कि चित्त स्थिर हो जाना, जम जाना, वह चारित्र है। स्वरूप कैसा है कहते हैं, स्वरूप कैसा है तो वह दृष्टि में आ गया है। मेरा स्वरूप शुद्ध चिदानंद निराकुल स्वरूप है, ये मेरा स्वरूप है। कैसा है, जो शुद्ध है, ज्ञान दर्शन और आनंद से भरपूर है और आकुलता रहित निराकुल ऐसा मेरा स्वरूप है, और वैसा ही दृष्टि में आ गया है। दृष्टि में यानी श्रद्धा में आ गया है। इस प्रकार सम्यक दर्शन हुआ। ये सम्यक दर्शन कैसा करना, इसकी विधि बता दी। क्या शरीर, कर्म, मन, वाणी मेरे नहीं है, मेरे में नहीं है। वाह, क्या कहा, शरीर मेरे में नहीं है, कर्म मेरे में नहीं है, वगैरह वगैरह, मैं उनका कर्ता भोक्ता नहीं है, पुण्य पाप मेरे स्वभाव में नहीं है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। अभी देखो क्या कहते हैं, देखो यहाँ क्या बताया, जो शरीर मन वाणी और कर्म ये तो मेरे में नहीं है ऐसा कहा, और जो पुण्य पाप के परिणाम है वह मेरे में नहीं है ऐसा कहा क्या? हाँ जी, वह मेरे स्वभाव में नहीं है ऐसा कहते हैं। ख्याल जाया, यानी वह जो पुण्य पाप के परिणाम इस जीव में ही उत्पन्न होते हैं, फिर भी वो स्वभाव रूप नहीं होते हुए विभाव रूप है, इसलिए यहाँ कहते हैं पुण्य पाप मेरे स्वभाव में नहीं है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। इस प्रकार स्वभाव सन्मुख प्रतीति वह सम्यक दर्शन है। है की जगह हूँ चाहिए, वो एक दो तीन चार ऊपर से चौथी लाइन वहाँ लिखा है कर्ता भोक्ता नहीं है, तो मैं नहीं हूँ और पुण्य पाप मेरे स्वभाव में नहीं है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ये हूँ है ना, वैसा लिखना चाहिए। एक जगह नहीं, कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, इधर ही से इस प्रकार जिसे यथार्थ स्वरूप ख्याल में आया है वह साधक जीव है। जैसे किसी को अमुक घर ख्याल आए तो वह उस और कदम बढ़ाता है। वैसे ही हमें स्वरूप का ख्याल आया है, मैं शुद्ध चिदानंद हूँ, मेरा यही स्वरूप उपाधेय है, ऐसे ज्ञानानंद स्वरूप में चरण करना वह चारित्र है। पर को नहीं मारना अथवा दया पालने का भाव पुण्य है। आगे क्या लिखा है बहन? चारित्र नहीं है। किसको कहा? ये जो पुण्य परिणाम है, जो शुभ परिणाम है, तो दुनिया तो ऐसा ही मानती है कि जो भूखे हैं उन्हें खाना खिलाएं, जो प्यासे हैं उन्हें पानी पिलाएं, जिनके पास रहने का ठिकाना है उनको रोटी कपड़ा और मकान देना, ये तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग है क्या? ये किनके लिए? पॉलिटिशियन के लिए। लेकिन अन्य जो है वो ऐसा कहते कि ऐसा ऐसा करो तो तुम्हें धर्म होगा, वो तो धर्म तो इतने नीचे स्तर पे गिरा है कि लोग कुछ ऐसा भी कहते हैं, तुम एक पैसा दे दो तुमको भगवान 10 लाख देगा। हाँ, सुना कि नहीं? कर गाना भी गाया होगा है ना? अरे भला मानस, तू दूसरे को क्यों दे दो एक पैसा देने की बात है, तू स्वयं दे ना, अभी इतने तेरे पास जमा हो गए हैं, तो एक एक पैसा देगा तो तेरे पास कम से कम 10-10 लाख 10 बार हो जाएंगे। वो तो लोगों को फंसाने की रीत है। क्या कह रहे? देखो, पर को नहीं मारना अथवा दया पालने का भाव पुण्य है, चारित्र नहीं। वो अर्थात अपना रूप, निज रूप कैसा है, और ज्ञान और आनंद आदि स्वभाव आत्मा में नित्य तादात्म्य रूप है। नित्य तादात्म्य संबंध जो होता है वो तो किसका किस में होता है? जयावेन आप जानती हैं? नित्य, हाँ, ज्ञान में और और कौन बतावे? आप बताएंगे? हाँ हाँ, क्या कहा? द्रव्य और गुण में कौन सा संबंध होता है? बोलो बोलो। जय बिन आप बता रही थी ना, कौन सा संबंध है? हाँ, नित्य तादात्म्य संबंध। देखो, तादात्म्य यानी एकमेक हो जाना। हा? और कैसा एकमेक? हमेशा अगर आपको वो चार आंखों के सामने आता हो तो द्रव्य का क्षेत्र और द्रव्य का काल और गुण का द्रव्य और गुण का क्षेत्र और गुण का काल दोनों का एक ही है। यह भी हम देख लेते कि जीव द्रव्य जो है उस जीव द्रव्य का द्रव्य जीव द्रव्य, उसका क्षेत्र असंख्यात प्रदेश और उसका काल अनादि अनंत। वैसे गुण को पूछा जाए, कौन सा? ज्ञान गुण को, कि तू कहाँ रहता है? तो कहते हैं मैं जीव में रहता हूँ। तो मैं, मेरा द्रव्य और वो द्रव्य दोनों का द्रव्य एक है। फिर क्षेत्र, तो कहते हैं मैं तो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहता हूँ। तो जीव द्रव्य का जो क्षेत्र है असंख्यात प्रदेशी, तो मेरा भी क्षेत्र असंख्यात प्रदेशी है। इस तरह से काल, मैं अनादि अनंत हूँ। क्यों साहब? क्योंकि मेरे जैसे अन्य गुणों से ही द्रव्य बना है, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। इस तरह जब हम देखते हैं तो द्रव्य की अपेक्षा से, क्षेत्र की अपेक्षा से और काल की अपेक्षा से द्रव्य और गुण, ये दोनों का द्रव्य क्षेत्र काल एक है। इसलिए उनका कैसा है? नित्य, हमेशा। अनादि अनंत काल बताए तो हमेशा रहने वाला ऐसा संबंध है। और कैसा है? एकमेक है। जैसे जो नमक होता है उस नमक में से खारापन जुदा नहीं कर सकता, वैसे आत्मा में से ज्ञान निकाल सकेंगे कि नहीं? तो क्यों? भाई उनका नित्य तादात्म्य संबंध है। अभी नित्य तादात्म्य समझ में आया ना? देखो क्या कहा, ज्ञान और आनंद आदि स्वभाव आत्मा में नित्य तादात्म्य रूप है, विकार बदल जाता है, यानी जो विकार है क्या कहते हैं राग या द्वेष के जो परिणाम है। अभी ऐसा हो सकता है कि कोई अपना आज के दिन बहुत अच्छा मित्र हो और कुछ दिन के बाद वही मित्र तुमको शत्रु जैसा लगे, उससे दोस्ती टूट जावे, ऐसा भी होता है कि नहीं। माँ बच्चे पर बहुत प्रेम करती है, ममता करती है, और कभी बच्चा उसका नहीं सुने तो फिर उसको मारती भी है कि नहीं। तो जो विकार जो है वो कैसे है कहते हैं, विकार जो है वो बदल जाते हैं, और संयोग कैसे हैं कि वो पर है, वो मेरे द्रव्य में तो है नहीं, वे मेरे स्वरूप में नहीं है। इस प्रकार ये दोनों मेरे स्वरूप में नहीं है। एक तो बिल्कुल जो संयोग है वह तो परद्रव्य ही है, इसलिए उसमें अत्यंत अभाव है, और जो स्वभाव जो है उस रूप, ये जो विकार है उस रूप नहीं है, इसलिए वह मेरे स्वरूप में नहीं है। इस प्रकार विभाव और निमित्त की रुचि छोड़कर स्वभाव की रुचि अर्थात अभेद निर्विकल्प रुचि करना वह सम्यक दर्शन है। लोग पूछते ना साहब, हमें इतना हम रोज पढ़ते हैं, इतने सालों से हम इतने क्लास अटेंड किए हैं और रोजाना हम घर में भी स्वाध्याय करते हैं, तो हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? सबका यही प्रश्न है। यहाँ क्या लिखा है, स्वभाव की रुचि करना यानी अर्थात अभेद निर्विकल्प की रुचि करना वह सम्यक दर्शन है। तो मैंने एक दफे बताया ना, गुरुदेव बोले तुमने रुचि नहीं, तो हम नाराज हुए थे, रुचि नहीं ऐसा बोले थे, पर रुचि होती अगर सही रूप से तो तुझे आज सम्यक दर्शन हो जाता। क्या कहते हैं लोग, तो ऐसा मानते हैं रुचि तो होगी नहीं, क्या करें हमारा पुरुषार्थ कम पड़ता है। पुरुषार्थ कहाँ का कम पड़ेगा, तेरे पहले रुचि नहीं ना स्व के तरफ जाने की, स्व में झुकने की, स्व में स्थिर होने की, स्व का स्वरूप समझने की हमें रुचि नहीं है, तो इसमें उसमें एकाग्र और इसमें लीनता कहाँ से होगी। तो कहते हैं स्वभाव की रुचि करना वह सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन पना बिना मुनि पना ले व्रत तप भी ले, किंतु वह सभी बाल तप ही है। यानी बाल तप यानी जो तप कुछ काम में नहीं आते, किस काम में नहीं आते, मोक्ष प्राप्त करने में कोई भी वह सहायभूत नहीं है, तो बिल्कुल व्यर्थ है। कहते नहीं, थोड़ा सा फल तो मिलेगा, क्या फल मिलेगा, संसार में रखड़ने का, चारों गति में घूमने का, क्यों परिणाम तो कैसे है, मंद है, 28 मूलगुण पालन करने के परिणाम है, जीवों को बचाने के परिणाम है, शुभभाव होगा और शुभभाव से क्या होगा, देवगति प्राप्त होगी, वहां पर भी मिथ्या तो कायम रहेगा, वहां से नहीं आएगा, एक इंद्रिय में नहीं आएगा, जो नवे ग्रह में जाने वाला जो हो, तो यहाँ वो कहते हैं कि भाई वहां से फिर नीचे यहाँ तिरंच में या मनुष्य में जहां जिसको जहां जैसी ऐसा कर करके संसार में ही रखड़ेगा, तो बिल्कुल काम का नहीं, ऐसा नहीं, काम यानी कुकाम में आने वाला है, काम में नहीं आने वाला है ऐसा सम्यक दर्शन। इसलिए कहते हैं सम्यक दर्शन पना बिना मुनि पना ले व्रत तप भी ले, किंतु वह सभी बाल तप ही है। स्वरूप जो आदि अंत से रहित है और त्रिकाली आनंद व शांति से भरा हुआ है, उसकी उपाधेय बुद्धि हुई है, पुण्य पाप हेय है, विपरीत है, ऐसी बुद्धि हुई है, निमित्त से मुझे किंचित भी लाभ नुकसान नहीं हो सकता, इस प्रकार उनकी पृथकता की बुद्धि हुई है। स्वरूप के पूर्ण सामर्थ्य की यथार्थ प्रतीति अनुभूति हुई है उससे सहित स्वरूप में फिर बने चरण करना वह चारित्र है। क्या कहते हैं कि सम्यक दर्शन के साथ साथ क्या कहा, स्वरूप के पूर्ण सामर्थ्य की यथार्थ अनुभूति हुई है और उससे क्या हुआ, उसके सहित यानी स्वरूप के अनुभव रहित कभी नहीं होगा, तो प्रभु उससे सहित स्वरूप में स्थिर बने चरण करना वह चारित्र है। वह आत्मा की निर्मल दशा है। जगत में कोई दो रोटी और पाव से दूध लेता हुआ दिखाई दे तो उसे लोग चारित्रवंत कहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि वो रूखा सूखा खाता है, पंच पकवान नहीं खाता है। क्या कहा, केवल दो ही रोटी और क्या दूध, वो भी थोड़ा सा यानी कम खाता है, नियम लेते। उन्हें वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है। क्या धर्म बाहर के पदार्थ में है कि नहीं? आचार्य अमृत चंद्र आचार्य जंगल में रहते थे, शास्त्र लिखने का विकल्प उठा है किंतु विकल्प के कारण शास्त्र की रचना नहीं हुई है, अपितु उद्गल परमाणुओं ने स्वयं शास्त्र की रचना की है लेकिन आत्मा ने उनकी रचना नहीं की। जो विकल्प उठा है उसका ज्ञाता हूँ स्वामी नहीं, ऐसा धर्मात्मा मानते हैं। यानी जो राग आ रहा है, राग उठ रहा है, उस राग का वो जानते हैं कि मैं करता नहीं हूँ, राग करने वाला नहीं हूँ, राग का स्वामी मैं नहीं हूँ, ऐसे उनको बिल्कुल खातरी रहती है। वो क्या कहते, ये जो बीच बीच में जो राग आ रहा है वह तो मेरे ज्ञान का गेय है, मेरे जानने में आने वाली बात है, लेकिन उससे वह न राग करते हैं न द्वेष करते हैं, क्योंकि काम्य भाव है ना उनके मुनियों के। तो इसलिए कहा जो विकल्प उठा है उसका ज्ञाता हूँ स्वामी नहीं, ऐसा धर्मात्मा मानते हैं। स्वरूप क्या है, स्वयं का और पर का स्वरूप क्या है? सर्वप्रथम अभी यहाँ देखो, ये स्वरूप क्या है कहने से पहले क्या बात उठाई, ये स्वयं का और पर का दोनों के स्वरूप की जानने की आवश्यकता है। तो कहते क्यों साहब, पर को क्यों जाने? तो पर को इसलिए जाने कि पर को वह पर रूप है ऐसा जाने, और स्व को स्व रूप है ऐसा जाने, और स्व को किस लिए जाने, तो स्व को स्व में स्थिर होने के लिए उसे जाने, और पर को क्यों जाने, तो उसमें स्थिर नहीं होना है, यानी पर का जरा भी अंश अपने में न मिलाना या अपना अंश पर में न मिलाना, इसके लिए स्व का और पर का दोनों का स्वरूप जानने की आवश्यकता है। तो क्या कहते हैं, स्वरूप क्या है स्वयं का और पर का स्वरूप क्या है, सर्वप्रथम उसे यथार्थ रूप से जानना चाहिए। क्योंकि मैं अभी पहले पहले तो हम शरीर से जो एकत्व बुद्धि है उसे अगर छुड़ाना है तो फिर ऐसा सोचे कि मैं तो चेतन द्रव्य हूँ और यह तो अचेतन है, मुझमें ज्ञान है और इसमें ज्ञान नहीं है, मैं रूपी हूँ और यह रूपी है, मैं सुख दुख का अनुभव करता हूँ और यह उसे कुछ नहीं अनुभव, तो मैंने आज तक मुझे जड़ स्वरूप अचेतन स्वरूप ही माना है, चल रहे तो यह तो मैं नहीं हो सकता, मैं तो ज्ञाता दृष्टा स्वभावी हूँ, अनंत आनंद का कंद हूँ। ऐसा जब हम अपने स्वरूप को देखते हैं तो ये जो मेरी क्वालिटी है, ये जो मेरे गुण है, क्या वे पर में है क्या, और जो पर के गुण है वे क्या मेरे में है क्या, इस तरह से जब यह जीव सोचेगा तो कहते हैं स्वयं का और पर का स्वरूप क्या है, सर्वप्रथम उसे यथार्थ रूप से जानना चाहिए। मेरा स्वरूप मेरे में है और पर का स्वरूप पर में है, पुण्य पाप विभाव है, वह मेरा स्वरूप नहीं, इसलिए वह मुझे मददगार नहीं। अभी देखो बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि राग करते करते धर्म होगा यानी वितरागता होगी, तो उन्होंने अपना जो स्वरूप है वितराग स्वभाव वितराग स्वरूप उसे जाना ही नहीं, क्योंकि हमें जो वितरागता प्राप्त करनी है तो उसके साधन जो होंगे उसका जो मार्ग होगा क्या वह मार्ग तरागी हो सकेगा। मार्ग भी वितरागी है और फल भी वितरागता है। तो ऐसा जब कोई मानता है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं। पुण्य करने से आगे चल के हमारा भला होगा तो बिल्कुल वस्तु स्वरूप पता नहीं है, न स्वता स्वरूप मालूम है और न पुण्य पाप का स्वरूप मालूम है। तो इसलिए कहते हैं पुण्य पाप विभाव है, वह मेरा स्वरूप नहीं है, इसलिए वह यानी पुण्य पाप मुझे मददगार नहीं है। मैं शुद्ध चिदानंद हूँ, इसमें रमण करना ही चारित्र है। चारित्र का अथवा धर्म का प्रभाव बाह्य संयोगों के ऊपर नहीं पड़ता, अपितु चारित्र का फल अंतर में होता है। स्वरूप में चरण करना वह चारित्र है। इस गाथा में चारित्र का अर्थ करते हैं वह समय अर्थात अपना आत्म पदार्थ। यह स्व समय का शब्द क्या था समझाया, कि स्वयं का जो स्वभाव है अपना जो आत्मा है उसको क्या कहेंगे, वह समय। शुद्ध चिदानंद में एकाग्र होने रूप प्रवृत्ति करना वह चारित्र है। परकी प्रवृत्ति आत्मा नहीं कर सकता, तथा पुण्य पाप रूप प्रवृत्ति भी आत्मा की प्रवृत्ति नहीं है। स्वयं ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान है, ये तीन जो शब्द है ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान, इसका अर्थ क्या लेना चाहिए, कौन बतावे, तेजो आप बताएंगे। स्वयं ही ज्ञाता है, स्वयं ही ज्ञेय है और स्वयं ही ज्ञान है, ऐसा कहते हैं। ये स्वयं जो है ना वो आदि दीपक है, तीनों में लगे, तो इसका अर्थ कैसा लेना, बोलो बोलो। हाँ हाँ कौन बताएगा, आप बताइए। हाँ बोलो। वो स्वयं की जगह आप मेरा शब्द डाल रही हैं, और थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, कर सकती हैं आप, करो करो। वह ज्ञान की पर्याय है, देखो देखो यहाँ तो बात एक ही है। और कोई बताना चाहते हैं, बोलो बेन, सुनो। हाँ देखो यहाँ क्या कहते हैं, वास्तव में ऐसे तीन भेद तो है ही नहीं, निश्चय से देखा जाए ये तीन भेद किए ना, तो भेदात्मक जो कथन होता है वो व्यवहार कथन होता है, लेकिन फिर भी समझने के लिए। अब ज्ञाता यानी क्या, कि जो जानने वाला है उसको ज्ञाता कहेंगे, तो जानने वाला ये पर्याय नहीं होगी बहन, वह तो त्रिकाली जानने वाला जानन स्वभावी ज्ञाता है वह।
भेद रूप लेना है, पर्याय को भिन्न करेंगे तो ये ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का भेद नहीं मिटेगा।
सुनो सुनो सुनो, देखो देखो, मैं समझाता हूँ, उसमें कोई आपको नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लेना। तो ज्ञाता यानी जो जानने वाला है, जिसको हम दूसरी भाषा में ज्ञायक भाव कहेंगे, हा? तो ज्ञायक भाव क्या होगा, पर्याय होगी। तो ज्ञाता यानी, अभी हम शुरू से लेते, ज्ञाता यानी जानने वाला, ये यानी जिसको जानना है वह, हा? बिल्कुल। और ज्ञान यानी जिसके साधन के, जिस साधन के द्वारा जाना जाता है। तो हम जानेंगे कि अलग अलग है एक ही वस्तु को, यानी वास्तव में तो ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान ऐसा बीच में कोई ऐसा डिफरेंस ही नहीं है। लेकिन जो यहाँ क्या कहते हैं कि स्वयं ज्ञाता स्वयं ज्ञेय और स्वयं ज्ञान है ऐसा समझकर, तो ऐसा समझना क्यों कि मैं स्वयं जानने वाला हूँ और मैं मुझको ही जानने वाला हूँ, और जानने के लिए साधन क्या है मेरे पास, तो कहते हैं जानने के लिए ज्ञान स्वयं जो स्वयं है वही उसका साधन है। तो अभी पर के तरफ देखने की कहाँ आवश्यकता रही कि भाई मुझको जानना है तो मैं किसके माध्यम से जानूं, किसके थ्रू जानूं, कोई हमें मदद करे तो जानने में आवे, ऐसा हूं क्या? तो नहीं, कहते तू स्वयं ही ज्ञेय है, किसको जानना है? पर को भी नहीं जानना है, स्व को ही जानना है। तो जानेगा किससे? तो तेरे स्वभाव में जो ज्ञान स्वरूप है उस ज्ञान गुण के द्वारा ही तू स्व को जानेगा। कैसा है तू? ज्ञान स्वरूप तू जो है उसको ज्ञान से जानेगा। हाँ, षटकर्म निषेध, कर्ता कर्म और करण, तीन बातें। ऐसा समझकर स्वयं में स्थिर होना वह चारित्र है। यानी जब यह जीव अपने स्वरूप में एकाग्र हो जाता है तो ये ऐसे कोई भेद उसमें बाकी रहते ही नहीं। हलवे, ये तो जो प्रक्रिया हो रही है उसको विश्लेषण, तीन भेद करके उसको समझाया है। तो कहते हैं स्वयं ज्ञाता स्वयं ज्ञेय और स्वयं ज्ञान है ऐसा समझकर, तो ऐसा क्यों समझना है कि भाई मुझे जानना है तो जानने वाला तो मैं ही हूँ, किसको जानना है तो मैं ही जानने वाला हूँ, जनाने वाला हूँ, यानी ज्ञान में आने वाला ही मैं हूँ। तो फिर जाने किससे? तो ज्ञान जो है वो तेरा ही स्वरूप है और उससे ही तू अपने को जानेगा। अब दूसरी बात कि जो तेरा ज्ञान पर को ढूंढ रहा है, पर में जा रहा है, तो उधर तू जाएगा तो तुझे अपना स्वरूप नहीं पता लगेगा। तो क्यों? ज्ञेय तू स्वयं है, पर को जानते बैठेगा तो तुझे तेरा अनुभव कब होगा? हेलो, तो इस तरह से ऐसा समझकर तो क्या हुआ, स्वयं में स्थिर हो जाना, उसी को चारित्र कहा है। नग्न होकर जंगल में रहने से साधुपना नहीं आता, यदि जंगल में रहने के कारण साधुपना आता हो तो पशु तो सदा ही जंगल में रहते हैं तो उनको भी साधुपना आना चाहिए। ये थोड़ी सी बहुत स्पष्ट बात है लेकिन समझ में आने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। देखो ये क्या कहना चाहती है, जो बाह्य स्वरूप जो मतलब बाह्य जो देखा हुआ दिख रहा है वह जो नग्नत्व है वह नग्नत्व साधुपना नहीं है। क्या कहा? नग्न होकर जंगल में रहने से साधुपना नहीं आता है। क्यों? अरे जंगल में क्या अपने घर में भी एक एक दो दो साल के बच्चे होते हैं, हा? वे भी नग्न होते हैं, तो क्या वो दो मिनट के लिए, दो घंटे के लिए या पूरे दिन के लिए साधु हो जाएगा? तो कहते हैं कि पशु तो सदा ही जंगल में रहते हैं तो उनको भी साधु बनाना चाहिए। कोई कहता है
कि एक धर्मी जीव परदेश में गया था, अब उसके धर्मी पने की परीक्षा करने के लिए किसी ने कहा कि तुम्हारा पुत्र मर गया। तो फिर उसे धर्मी जीव जवाब देता है कि मैं धर्मी हूँ, इसलिए मेरा पुत्र नहीं मर सकता। यह दृष्टांत देकर अज्ञानी कहता है कि धर्म के फल में पुत्र नहीं मरता। अभी उसने क्या कहा कि मैं धर्मी हूँ, यानी मैं जानने वाला हूँ वस्तु का स्वरूप, इसलिए आप जो कहते हैं कि मेरा पुत्र मर गया, तो वो तो कहीं मरा नहीं, एक भव से दूसरे भव में चला गया, उसमें कहा उसका मरण हुआ। तो ऐसा वो तो समझता है, धर्मी है ना, वस्तु स्वरूप जानता है, धर्मी यानी ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है। तो वो अज्ञानी क्या मानता है, अरे क्या हुआ कि अज्ञानी कहता है कि धर्म के फल में पुत्र नहीं मरता, जबकि वे सभी बातें असत्य है, पुत्र तो पुण्य के संयोग रूप है, धर्म के कारण संयोग का वियोग न हो ऐसा नहीं होता। मुनि तो उत्कृष्ट धर्मी है, फिर भी उन्हें सिंह फाड़ कर खा जाता है, यानी जो स्वयं धर्मी है उनकी भी मौत आती है, तो उनके पुत्र के नहीं मरने की बात ही कहां से सच होगी। तथा कोई कहता है कि अहिंसा के प्रभाव के कारण पास में आया हुआ हिंसक जीव भी शांत हो जाता है, बैर का त्याग देता है, तो क्या यह बात भी असत्य है, क्योंकि अहिंसा का प्रभाव दूसरे के ऊपर नहीं होता। स्वभाव में लीनता होने पर अपने में बैर का नाश होता है, मुनि को सर्प काट लेता है, बाघ फाड़ कर खा जाता है, फिर भी अंतर में परिपूर्ण अहिंसा है। सिंह मुनि के शरीर को खा जाए तो उससे मुनि का अहिंसामय चारित्र चला जाता हो ऐसा नहीं है। सिंह तो शरीर को खाता है, किंतु वह मुनि की आत्मा को किंचित भी नहीं मार सकता। कोई कहता है कि मुनि के पास सर्प आया और मुनि के प्रभाव से डसे बिना चला गया, किंतु चारित्र का फल पर में नहीं होता। पवित्र मुनि को भी यदि असाता का उदय हो तो उस समय सर्प डस जाता है और मुनि की मृत्यु हो जाती है, तो क्या उससे मुनि की अहिंसा चली जाती है, नहीं। अतः वस्तु का जैसा स्वतंत्र स्वभाव है वैसा निर्णय करना चाहिए। ये तो आसान है, इसमें क्या समझावे, फिर भी किसी के कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना, कोई बात नहीं समझ में आ रही है। चारित्र का प्रभाव परद्रव्य के ऊपर नहीं पड़ता, यदि परद्रव्य के ऊपर प्रभाव पड़ता हो तो मुनि के 22 परिशह असत्य हुए। ख्याल में क्या कहना चाहते, देखो ये 22 परिशह क्या होते हैं ये पहले हमें मालूम होना चाहिए। तो 22 प्रकार के उनके ऊपर जो मतलब संकट आते हैं, वह उनके तरफ ध्यान न देते हुए अपने स्वरूप में लीन हो जाते तो उसके जीत लिया, ऐसा कहने में आता है। तो क्या कहा, यदि परद्रव्य के ऊपर प्रभाव पड़ता हो, अगर मुनि के चारित्र गुण के कारण परद्रव्य पर प्रभाव पड़ता हो तो उनके जो 22 परिशह कहे गए हैं वो असत्य हो जाएंगे, जबकि मुनि को मच्छर आदि काट लेते हैं। श्रीमद जी ने भी कहा है, एकाकी विचरतो वली स्मशान मा, वली चाहिए हो, वली पर्वत मा बाघ सिंह संयोग जो, अडोल आसन में मन आसन ने मन मा नहीं क्षोभता, क्षोभता चाहिए कि क्षोभ चाहिए ना,
क्षोभता
क्षोभ है उसका,
इकतालीस माने थे का,
हाँ
एकाकी विचरतो वली स्मशान मा
वरि पर्वतमा भागसीन संयोग जो अडोल आसन ने मनमा नहीं शोभता परम मित्र नो जाने पान्या योग जो अपूर्व अवसर वो क्यारे आवसे
ये क्या कह रहे देखो कि ऐसा मुनि राज या यहाँ तो वास्तव में क्या कहते हैं श्रीमद जी ऐसी भावना भाते हैं कि मैं एकाकी विचरण कब करूं कहाँ स्मशान में या पर्वत में और तब क्या होवे कि वाघ सिंह का जो संयोग मुझे मिले तभी भी मैं अडोल आसन में मतलब मैं अपने स्वरूप में ऐसा लीन हो जाऊं कि दोलायमान नहीं हो जाऊं अडोल रह जाऊं और मन में कोई क्षोभ न रहे और ये जो सिंह बाघ आदि जो है वो वास्तव में जैसे कि मेरे परम मित्र है और उनका मुझे संयोग मिला है ऐसा पूर्व अवसर कब आएगा ऐसा वो मन में विचार करते हैं। मुनि के शरीर को सिंह मारने आवे तब मुनि विचार करते हैं मुझे शरीर नहीं चाहिए और तुझे चाहिए है इसलिए तू तो मेरा मित्र है मैं तो मेरे अखंड आनंद में ही वर्तता हूँ हमें तो क्षण क्षण में यानी क्षण क्षण में आनंद में लीनता हुआ करती है शरीर के छूटने का समय हो और तुझे चाहिए हो तो ले ले इस प्रकार वे सिंह को मित्र जानते हैं। मुनिराज तीनों ही काल नग्न दिगंबर ही होते हैं यानी अभी पंचम काल चल रहा है थोड़ा सा कुछ एडजस्टमेंट करो आजकल की भाषा में कुछ मांडवली करो जरा कुछ आप उधर से इधर हम उधर से तो कहते तीनों काल मुनि के स्वरूप में अरे मुनि के अग्नि के स्वरूप में कभी भी तफावत नहीं होगी किसी के स्वभाव में कोई तफावत नहीं होगी तो क्या कह रहे हैं यहाँ कि मुनिराज तीनों ही काल नग्न दिगंबर ही होते हैं सिंह छलांग लगाकर फाड़ कर खाने आता है तब मुनि कहते हमें शरीर नहीं चाहिए तुझे शरीर चाहिए हो तो तू भले ले जा अरे मुझे सिंह मारेगा ऐसा मानने वाले को तो चारित्र ही नहीं होता अतः वस्तु जैसी है वैसी प्रतीति करो अभी कैसा पढ़ने का है हेडिंग है चलो नहीं ना स्व में प्रवृत्ति करना वह चारित्र है किंतु शुभ की प्रवृत्ति करना वह चारित्र नहीं क्या कहते देखो स्व में रमण करना अर्थात स्व में प्रवृत्ति करना ऐसा चारित्र का अर्थ है किंतु दूसरा कोई आकर मुनि को न मारे ऐसा चारित्र का अर्थ नहीं है यानी दूसरा कोई आके उनके ऊपर उपसर्ग करे ऐसा नहीं होगा ऐसा नहीं सम्यक प्रकार से ज्ञान का परिणमन वह स्व समय है शरीर में रोग न आवे यह चारित्र का फल नहीं है मुनि का वचन निकले दृष्टि पड़े और किसी को निरोगता हो जाए ऐसी लब्धि हो अथवा न हो उसके साथ चारित्र का कोई संबंध नहीं है क्या कहा यानी कई मुनिराज ऐसे होते हैं कि उनके वचन निकले आशीर्वादात्मक वचन निकले तो साचे हो जाते हैं और क्या कहते हैं मुनि का वचन निकले दृष्टि पड़े और उसके कारण क्या होगा किसी को निरोगता आ जाए ऐसी अगर लब्धि किसी के पास हो अथवा न भी हो तो ऐसी लब्धि होने से ये लब्धि के साथ चारित्र का कोई संबंध नहीं है। समझ में
ये जो तप के बल से ऐसी रिद्धि प्राप्त होती है तो वहाँ समझना उस चारित्र के साथ जो पुण्य के परिणाम है उसके कारण वो लब्धि है, चारित्र के कारण नहीं।
ये 64 रिद्धियाँ होती हैं, ये वास्तव में तो 64 प्रकार की रिद्धियाँ जो है वो मुनिराज को उनके ज्ञान के यानी तप के प्रभाव से होती है। मतलब उनके ज्ञान भी ऐसा हो जाता है प्रबल और उसको उनके चारित्र भी प्रबल हो जाता है, उनके कारण तप के कारण उनको वास्तव में ये रिद्धियाँ प्राप्त होती है। लेकिन उन रिद्धियों के कारण उनके चारित्र में बहुत स्ट्रेंथ है, वो अधिक एकाग्र है, ऐसा नहीं लेना है। वो तो होते भाई उसका और उसका कोई संबंध नहीं, ऐसा कहते हैं, चारित्र का फल नहीं है। क्या कहा? देखो ऐसा है कि मुनिराज, वो तो कथा आपको तो मालूम होगी कि एक मुनिराज को बहुत कूढ़ हुआ था और एक राजा जो जिस गांव का राजा था तो उसका जो मंत्री था वो जैनी था और अन्य लोग ऐसे थे तो उसके ऊपर बहुत मतलब अच्छी तरह से उसको नहीं देखते थे, उसके ऊपर बहुत जलते थे। तो उन्होंने एक दफे राजा को बोला, अरे इनका कोई मुनि आ गया है, वो फला फला जगह में जंगल में है, तो उसके तो पूरे शरीर कोढ़ हो गया है, एकदम बू आती है, ऐसा है वैसा है। तो उसने कहा ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। वो मंत्री बोला हमारे मुनिराज तो अच्छे होते, ये होते वो होते सब। उसने कहा तो ऐसा क्यों? कि आपने जैन धर्म का नाम बदनाम न होवे इसलिए उसने सारा खोटा खोटा बोल दिया कि ऐसा है वैसा है, हमारे मुनिराज ऐसे नहीं होते। तो फिर क्या हुआ? तो नहीं, कल हम जाके सारे राज मतलब जो सिपाही थे बाकी जो लोग होंगे सब परिवार सहित ऐसा वहां जाके मुनिराज को देखेंगे। तो ये डर गया, दौड़ा दौड़ा चला गया मुनिराज के पास और कहा कि साहब मैंने इस कारण से खोटा बोल दिया है कि आप ऐसे हो वैसे हो, कल तो आपको देखने को आने वाले हैं सब। तो कोई बात नहीं, आ जाओ, चिंता नहीं करो, तुम जाओ। तो मुनिराज को ऐसी रिद्धि थी कि उनकी जो थूक थी वो तो थूक शरीर को लगा देवे तो पूरा शरीर एकदम सोने जैसा चमकने लगा। तो फिर जैसे वो लोग आए, राजा आए, उनके मंत्री आए, उनका सैन्य आया, सब देखते तो अरे इनका तो ऐसा एकदम प्रभाव चलिए व्यक्तिमत्व है, जैसे एकदम शरीर एकदम अच्छा है। तो सब लोग चले गए, आप सच कह दो बोल के वो निकल गए। तो फिर वो जो मंत्री था वो रुक गया, महाराज ये आपने क्या किया? तो उसने कहा ये देख, ये अभी मेरी एक उंगली है उसमें भी वो रोग है, मैं चाहता तो उसे भी नष्ट कर सकता था, लेकिन तूने अच्छे दिल से ये बात बताई कि भई हमारे धर्म में ऐसा नहीं होता है, इसके लिए मैंने ये बात की। हमें तो शरीर के साथ कोई एकत्व बुद्धि है नहीं, ये शरीर मेरा है ही नहीं, इस बात को तो हम जानते हैं मानते हैं और औरों को यही बात बताते हैं। तुम ये बात कहां से निकली? ये रुद्धि के ऊपर से। ऐसी रुद्धि होती है कि जिस एक थाली मतलब जिसके घर में जाए और वहां उनका आहार हो जाए कोई मुनिराज का, और घर में तो केवल अपने घर के लोग और मुनियों के लिए मतलब घर के लोगों के लिए आहार बनाते हैं उसमें मुनिराज को देते हैं, लेकिन वहां चक्रवर्ती का सैन्य भी आ जाए तो उसी थाली में खा जाए तो वो पूरा पड़ता है इसमें। और चक्रवर्ती का तो कितना सैन्य थे, 96,000 इतने 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 सबको खाना गया। फिर वो ऐसी एक वृद्धि होती है, ऐसे अनेक रुद्धियां हैं। ये 64 रुद्धियां में ये सारी बहुत अच्छी अच्छी बातें आती हैं, लेकिन वो सुनने से अपने मुंह को पानी आता है, अरे मेरे को भी ऐसा हो तो कहते उसका कोई संबंध नहीं है चारित्र से। ये मूल बात है, क्योंकि ऐसे मुनिराज होते हैं कि उनको पता ही नहीं रहता है कि मैं ऐसा रुद्धि का धारक हूं। ये तो आप रक्षाबंधन वाली स्टोरी तो जानते हैं ना, हाँ कंपना विष्णु कुमार जो थे वो, जरा जोर से बोली, वो श्रुत सागर मुनिराज होते हैं उनके ऊपर तो वो होता है, और आप जो अकम्पनाचार्य कह रहे वो तो उनके मुख्य है, और जो विष्णु कुमार मुनि थे उनको तो हाँ कैसी विक्रिया रिद्धि थी, तो विक्रिया रिद्धि थी तो उनको पता ही नहीं था मेरे में ऐसी विक्रिया रिद्धि है, तो किसी अवधि ज्ञानी ने जाना और उन्होंने कहा कि भाई इसको जाके लेके आना, ये सारा काम कर, उनको मुनि पद छोड़ना पड़ा। मुनि पद छोड़ने से मतलब जो ऊपर के पद था उससे वो नीचे आए, और उन्होंने वो जो विक्रिया वगैरह धारण किया था सब आप जानते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसे बहुत मुनिराज होते हैं तो इनके पास बड़ी बड़ी रिद्धियां होते हुए भी वो उसका कभी उपयोग ही नहीं करते। ख्याल में तो यहाँ क्या बात हो रही है कि शरीर में रोग न आवे वह चारित्र का फल नहीं है। मुनि का वचन निकले, दृष्टि पड़े, किसी को निरोगता हो जाए, ऐसी लब्धि हो अथवा न हो, उसके साथ चारित्र का कोई संबंध नहीं है। वेश्या के घर में मुनि नहीं रहते, ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी मुनिराज को ऐसा विकल्प भी नहीं आता, वे स्वयं के लिए बनाया हुआ आहार भी नहीं लेते। स्वयं ज्ञान मूर्ति है ऐसा अनुभव वह चारित्र है, किंतु पुण्य पाप में प्रवृत्ति वह चारित्र नहीं है। 28 मूल गुण पालन की प्रवृत्ति, शुद्ध आहार लेने की वृत्ति राग है, चारित्र नहीं। धर्मी को कोई आकर मार्ग जावे तो स्व समय प्रवृत्ति अटक जाती हो ऐसा नहीं होता। क्या कह रहे हैं देखो, हाँ ये धर्मी को कोई आकर मार जावे यानी उनको मारा मारी कर उनके ऊपर कोई संकट लावे या उनको खत्म कर दे, दोनों में से जो भी लेना, तो क्या कहते हैं स्व समय प्रवृत्ति अटक जाती हो ऐसा नहीं है, यानी वो अपने स्वरूप में लीनता नहीं कर सकते ऐसा कभी नहीं होगा। इसका कोई उदाहरण है क्या आपके पास कि बहुत संकट आया फिर भी? हाँ बबीता बोल, नहीं हाँ मुनि पार्श्वनाथ के ऊपर बहुत उपसर्ग हुआ। हाँ जी हाँ, अरे ऐसे तो बहुत है, पर हम पार्श्वनाथ को इसलिए कहते हैं कि वो उसी बहुत से मोक्ष चलेंगे ना, तो वो अंतरंग में स्थित हुए, बाहर में जो कुछ होना था सो हुआ, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं रहा, और उसी भाव में वो केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले गए। हाँ वो मुनिराज जो थे वो उसी भाव से मोक्ष नहीं गए थे, यहाँ तो आत्मस्थिरता है ना, तो ये तो आत्मस्थिरता है, इसकी तो गारंटी है कि पार्श्वनाथ के ऊपर ऐसा बड़ा संकट आया, इतना उपसर्ग किया, फिर भी वो अपने स्वरूप से नहीं दिखे। वैसे पांडवों की बात लेना, हाँ तीन जन जो थे वो भी तो उसी समय केवल ज्ञान प्राप्त करके उसी भाव में मोक्ष चले गए, तो यहाँ वही कहते हैं कि धर्मी को कोई आकर मार जावे तो स्व समय प्रवृत्ति अटक जाती हो ऐसा नहीं होता। भूमिका अनुसार बाहर के निमित्त होते हैं किंतु उससे विरुद्ध नहीं होते, तथापि बाह्य निमित्त के साथ स्व समय की प्रवृत्ति का संबंध नहीं है। मुनिराज को मुनिपद के योग्य शुभ राग तो होता है किंतु मुनि दशा में वस्त्र पात्र रखने का विकल्प आए ऐसा तीव्र राग मुनिराज को कभी नहीं होता। क्या कहते हैं मुनिपद के योग्य शुभ राग आएगा लेकिन ऐसा तीव्र राग यानी अशुभ राग मुनिराज को कभी नहीं आता। नग्न भाव मुंड भाव सह स्नानता अदंत धोवन आदि परम प्रसिद्ध जो, यानी क्या कहते हैं अदंत धोवन यानी दातुन आदि नहीं करना, ब्रशिंग, 28 मूल गुण पालन में आता है। जो वस्तु जैसी है वैसा समझकर जागृत हुआ है। ये नग्न भाव यानी नग्नत्व, मुंड यानी केश लोच करना और अस्नानता यानी कभी भी स्नान व्रत जिसको हम कहते हैं, अदंत धोवन यानी दातुन आदि नहीं करना आदि परम प्रसिद्ध जो ऐसे 28 मूल गुण जो है वो तो बहुत मतलब मुनिराज उसका पालन करते हैं। जो वस्तु जैसी है वैसा समझकर जागृत हुआ है, जो चारित्रवंत हुआ है उसे हट रहित 28 मूल गुण का पालन होता है। यानी जो चारित्रवंत हुआ है इसका अर्थ क्या लेना कि जिसको निश्चय चारित्र है उनके ये 28 मूल गुण पालन सहज रूप से हो जाते हैं, वो हट करना पड़ता नहीं है। और जिनको चारित्र ने वो हट पूर्वक पाल नहीं करते क्योंकि उसी में वो धर्म हुआ ऐसा मानते हैं। स्वरूप में रमण करना वह चारित्र है, स्व समय में प्रवृत्ति करना उसका अर्थ है। जीव शरीर की नग्न दशा की प्रवृत्ति नहीं कर सकता, वह तो उसके क्रम में हो जाती है। देखो कितनी अच्छी बात बताई, ख्याल में लता बेन सूखी दू नग्न दशा की प्रवृत्ति नहीं कर सकता कौन? जीव। यानी अभी ये मैं कपड़े उतारूं तो ये कपड़े उतारने का कार्य भी ये जीव नहीं कर सकता ऐसा बताया, क्योंकि पर पदार्थ है ना, तो ये ऐसा क्रम में सहज हो जाता है कि कपड़ा जी आप हम समझते कि मैंने कमीज उतारा हाँ तो मैं परद्रव्य का कार्य करता हूँ ऐसा हमने नक्की किया ना, तो वो तो उनके तो शरीर पर से जो वस्त्र हट जाते हैं वो वस्त्र के ऐसा परिणमन होना था तो हुआ, और वो बिल्कुल नहीं मानते कि मैंने जो ये प्रवृत्ति की कौन सी नग्न दशा प्राप्त करने की वह मैंने नहीं की, वो तो सहज हुई है। तो क्या कहा यहाँ देखो अपने को यूनिवर्सल ट्रुथ क्या दिया है, जीव शरीर की नग्न दशा की प्रवृत्ति नहीं कर सकता, वह तो उसके यानी वो जो नग्नता आती है वह तो उसके क्रम में हो जाती है, क्योंकि वो शरीर है ना, तो शरीर में जो अनंत परमाणु है उनके जिस समय जैसी योग्यता होगी वैसे उनका परिणमन होगा। जो आंख की पलक फिरती है वह परमाणु के कारण है, आत्मा के कारण नहीं। जो आंखें यहाँ से यहाँ होती है तो कहते वह भी आत्मा नहीं कहते। क्या कहा? आंख की पलक फिरती है वह परमाणु के कारण है, आत्मा के कारण नहीं। मुनिराज अंतर में प्रवृत्ति करते हैं किंतु बाहर की किसी भी प्रवृत्ति के वे कर्ता नहीं होते, मात्र ज्ञाता है। यानी वो स्वयं ज्ञाता दृष्टा है ऐसी उनके पूरे पूरे मतलब खातरी हुई है और वो स्वरूप में स्थिरता भी करते हैं, इसलिए वे जानते हैं कि मैं तो अंदर में प्रवृत्ति कर सकता हूँ, बाहर में कोई भी प्रवृत्ति मेरे से नहीं होती है, और जो बाहर की प्रवृत्ति हो रही है उसका मैं सिर्फ ज्ञाता दृष्टा हूँ। बहुत उपदेश देवे, अनेक मंदिर बनावे, बहुत पाठशालाएं चलावे, वे मुनि ऐसा मुनि का अर्थ नहीं है। पर पदार्थ तो उनके कारण बनते हैं। यदि देखो देखो क्या कहते हैं, जो कुछ मुनिराज ऐसे होते कि बहुत उपदेश देते हैं, कई मुनिराजों के द्वारा अनेक मंदिर की स्थापना होती है और बहुत पाठशालाएं गुरुकुल आदि चलते हैं, तो वो कहते हैं कि वे मुनि ऐसा नहीं है, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। पर पदार्थ तो उनके कारण बनते हैं। यानी जो कोई मंदिर आदि बनने का गुरुकुल आदि जो बनते हैं पाठशालाएं बनती हैं, वो जो उनका जो कार्य हो रहा है वो उनके कारण हो रहा है। देखो गुरुदेव को ऐसा प्रश्न पूछते थे कि भाई आपने ऐसी इच्छा प्रदर्शित की कि यहाँ परमा का मंदिर हो जाए और बन गए, लोगों ने बनाया वो आपने ही बनाया ना, ऐसा पूछ लेते। तो कहते कौन बनावे, कौन बनावे यानी क्या, ये जो पुद्गल का जो वर्णमन है वैसा ही होना है, उसका कौन कर सकता है। वही कहते हैं यहाँ पर भी, मुनि का अर्थ नहीं है, पर पदार्थ तो उनके कारण बनते हैं। यदि कदाचित बाहर में ऐसा योग न हो तो उससे मुनि बना चला नहीं जाता। अब ये बात कर लेंगे क्योंकि इसमें काफी बात करने जैसी है। हाँ, बहुत उपदेश है। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लो कालो, सो वाणी मस्तकणमो सदा देतो।